एक दिन मिर्जा साहब और मैं बरामदे में साथ साथ कुर्सियां डाले चुपचाप बैठे थे। जब दोस्ती बहुत पुरानी हो जाए तो गुफ्तगू की चंदा ज़रूरत बाकी नहीं रहती, और दोस्त एक दूसरे की खामोशी से भी लुत्फ़अंदोज़ हो सकते हैं। यही हालत हमारी थी, हम दोनों अपने अपने ख्यालात में गर्क थे। मिर्जा साहब तो खुदा जाने क्या सोच रहे थे, लेकिन मैं ज़माने की नासाजगारी पर गौर कर रहा था। दूर सड़क पर थोड़े थोड़े वक्फे के बाद एक मोटर कार गुजर जाती थी। मेरी तबीयत कुछ ऐसी वाकई हुई है कि मैं जब किसी मोटर कार को देखूं, मुझे ज़माने की नासाजगारी का ख्याल ज़रूर सताने लगता है, और मैं कोई ऐसी तरकीब सोचने लगता हूँ जिससे दुनिया की तमाम दौलत सब इंसानों में बराबर तकसीम की जा सके। अगर मैं सड़क पर पैदल जा रहा हूँ और कोई मोटर इस अदा से गुजर जाए कि गर्दोगुबार मेरे फेफड़ों, मेरे दिमाग, मेरे मैदे तक पहुँच जाए, तो उस दिन घर आकर मैं इल्मे कीमिया की वो किताब निकाल लेता हूँ जो मैंने एफए में पढ़ी थी, और इस गरज से उसका मुताला करने लगता हूँ कि शायद बम बनाने का कोई नुस्खा हाथ आ जाए। मैं कुछ देर तक आहें भरता रहा, मिर्जा साहब ने कुछ तवज्जो न की। आखिर मैंने खामोशी को तोड़ा और मिर्जा से मुखातिब होकर बोला, मिर्जा हम में और हैवानों में क्या फ़र्क है? मिर्जा साहब बोले, भाई कुछ होगा ना आखिर। मैंने कहा मैं बताऊं तुम्हें? कहने लगे बोलो। मैंने कहा कोई फ़र्क नहीं, सुनते हो मिर्जा, कोई फ़र्क नहीं हम में और हैवानों में, कम से कम मुझ में और हैवानों में कोई फ़र्क नहीं। हाँ 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 मैं जानता हूँ तुम मीन मेख निकालने में बड़े ताक हो, कह दोगे हैवान जुगाली करते हैं, तुम जुगाली नहीं करते, उनकी दुम होती है तुम्हारी दुम नहीं, लेकिन इन बातों से क्या होता है? इनसे तो सिर्फ यही साबित होता है कि वो मुझसे अफजल हैं। लेकिन एक बात में मैं और वो बिल्कुल बराबर हैं, वो भी पैदल चलते हैं, मैं भी पैदल चलता हूँ। इसका तुम्हारे पास क्या जवाब है? कुछ जवाब नहीं, बस चुप हो जाओ, तुम कुछ नहीं कह सकते। जब से मैं पैदा हुआ हूँ उस दिन से पैदल चल रहा हूँ। पैदल, तुम पैदल के मानी नहीं जानते। पैदल के मानी है सीना है ज़मीन पर इस तरह से हरकत करना कि दोनों पाँव में से एक ज़रूर ज़मीन पर रहे, यानी तमाम उम्र हरकत करने का तरीका यही रहा है कि एक पांव ज़मीन पर रखता हूं और दूसरा उठाता हूं, दूसरा रखता हूं, पहला उठाता हूं, एक आगे एक पीछे, एक पीछे एक आगे। खुदा की कसम इस तरह की ज़िंदगी से दिमाग सोचने के काबिल नहीं रहता, हवास बेकार हो जाते हैं, तखय्युल मर जाता है, आदमी गधे से बदतर हो जाता है। मिर्ज़ा साहब मेरी इस तकरीर के दौरान में कुछ इस बेपरवाही से सिगरेट पीते रहे कि दोस्तों की बेपरवाही पर रोने को जी चाहता था। मैंने अजहद हकारत और नफ़रत के साथ मुंह इनकी तरफ से फेर लिया। ऐसा मालूम होता था कि मिर्ज़ा को मेरी बातों पर यकीन ही नहीं आता, यानी मैं जो अपनी तकालीफ बयान कर रहा हूँ वो महज ख़याली हैं, यानी मेरा पैदल चलने के ख़िलाफ़ शिकायत करना काबिल तवज्जे ही नहीं, यानी मैं किसी सवारी का मुस्तहिक ही नहीं। मैंने दिल में कहा, अच्छा मिर्ज़ा यूँ ही सही, देखो तो मैं क्या करता हूँ। मैंने अपने दांत पिच्ची कर लिए और कुर्सी के बाजू पर से झुक कर मिर्ज़ा के करीब पहुँच गया। मिर्ज़ा ने भी सर मेरी तरफ मोड़ा, मैं मुस्कुरा दिया, मेरे तबस्सुम में जहर मिला हुआ था। जब मिर्ज़ा बिल्कुल सुनने के लिए तैयार हो गया तो मैंने चबा चबा कर कहा, मिर्ज़ा मैं एक मोटर कार खरीदने लगा हूँ। ये कहकर मैं बड़े इस्तिख़्ना के साथ दूसरी तरफ देखने लगा। मिर्ज़ा बोले, क्या कहा तुमने, क्या खरीदने लगे हो? मैंने कहा, मिर्ज़ा तुमने सुना नहीं, मैं एक मोटर कार खरीदने लगा हूँ। मोटर कार एक ऐसी गाड़ी है जिसको बाज लोग मोटर कहते हैं, बाज लोग कार कहते हैं, लेकिन चूंकि तुम ज़रा कुंद ज़हन हो इसलिए मैंने दोनों लफ्ज़ इस्तेमाल कर दिए ताकि तुम्हें समझने में कोई दिक्कत पेश ना आए। मिर्ज़ा बोले, अब के मिर्ज़ा नहीं, मैं बेपरवाही से सिगरेट पीने लगा, और भमें मैंने ऊपर को चढ़ा ली, सिगरेट वाला हाथ मुंह तक इस अंदाज से लाता और हटाता था कि बड़े बड़े एक्टर इस पर रश करें। थोड़ी देर के बाद मिर्ज़ा फिर बोले, मैंने सोचा असर हो रहा है, मिर्ज़ा पर रोब पड़ रहा है, मैं चाहता था मिर्ज़ा कुछ बोले ताकि मुझे मालूम हो कि कहाँ तक मरूब हुआ है, लेकिन मिर्ज़ा ने फिर कहा, मैंने कहा, मिर्ज़ा जहाँ तक मुझे इल्म है तुमने स्कूल और कॉलेज और घर पर दो तीन ज़बानें सीखी हैं, और इसके अलावा तुम्हें कई ऐसे अल्फाज भी आते हैं जो किसी स्कूल और कॉलेज या शरीफ घराने में नहीं बोले जाते। फिर फिर भी इस वक्त तुम्हारा कलाम हम से आगे नहीं बढ़ता, तुम जलते हो मिर्ज़ा। इस वक्त तुम्हारी जो ज़हनी कैफियत है उसको अरबी ज़बान में हसद कहते हैं। मिर्ज़ा साहब कहने लगे, नहीं ये बात तो नहीं, मैं तो सिर्फ़ ख़रीदने के लफ्ज़ पर गौर कर रहा हूँ। तुमने कहा कि मैं एक मोटर कार ख़रीदने लगा हूँ, तो मियाँ साहबजादे ख़रीदना तो एक ऐसा फ़ेल है कि उसके लिए रुपए वगैरह की ज़रूरत होगी, वगैरह का बंदोबस्त तो बखूबी हो जाएगा लेकिन रुपए का बंदोबस्त कैसे करोगे। ये नुक्ता मुझे भी ना सूझा था। लेकिन मैंने हिम्मत ना हारी, मैंने कहा मैं अपनी कई कीमती अशिया बेच सकता हूँ। मिर्ज़ा बोले, कौन कौन सी मसलन? मैंने कहा एक तो मैं अपना सिगरेट केस बेच डालूंगा। मिर्ज़ा कहने लगे, चलो दस आने तो ये हो गए, बाकी 2500-3000 का भी इंतज़ाम हो जाएगा। उसके बाद ज़रूरी यही मालूम हुआ कि गुफ्तगू का सिलसिला कुछ देर के लिए रोक दिया जाए। चुनाचे मैं मिर्ज़ा से बेजार होकर खामोश हो रहा। ये बात समझ में ना आई कि लोग रुपया कहाँ से लाते हैं। बहुत सोचा, आखिर इस नतीजे पर पहुँचा कि लोग चोरी करते हैं। इससे एक गुना इत्मीनान हुआ। मिर्ज़ा बोले, मैं तुम्हें एक तरकीब बताऊं, एक बाइसिकल ले लो। मैंने कहा वो रुपए का मसला था, फिर जूं का तू रहा। कहने लगे मुफ्त। मैंने हैरान होकर पूछा, मुफ्त वो कैसे? कहने लगे मुफ्त ही समझो, आखिर दोस्त से कीमत लेना कहाँ की शराफत है। अलबत्ता तुम एहसान कबूल करना गवारा न करो तो ये और बात है। ऐसे मौके पर जो हंसी में हंसता हूँ उसमें मासूम बच्चे की मसर्रत जवानी की खुश दिली, उबलते हुए फव्वारों की मौसीकी और बुलबुलों का नगमा सब एक दूसरे के साथ मिले होते हैं। चुनाचे मैं ये हंसी हंसा और इस तरह हंसा कि खिली हुई बाछें फिर घंटों तक असली जगह पर वापस ना आई। जब मुझे यकीन हो गया कि यकलख्त कोई खुशखबरी सुनने से दिल की हरकत बंद हो जाने का जो ख़तरा है उससे महफूज हूँ, तो मैंने पूछा, है किसकी? मिर्ज़ा बोले, मेरे पास एक बाइसिकल पड़ी है, तुम ले लो। मैंने कहा फिर कहना, फिर कहना। कहने लगे, भाई एक बाइसिकल मेरे पास है, जब मेरी है तो तुम्हारी है, तुम ले लो। यकीन मानिए मुझ पर घड़ों पानी पड़ गया, शर्म के मारे में पसीना पसीना हो गया। 14वीं सदी में ऐसी बेगर्जी और इशार भला कहाँ देखने में आता है। मैंने कुर्सी सरकाकर मिर्ज़ा के पास कर ली। समझ में ना आया कि अपनी नदामत का इजहार किन अल्फाज में करूँ। मैंने कहा, मिर्ज़ा सबसे पहले मैं उस गुस्ताखी और बेअदबी के लिए माफ़ी मांगता हूँ जो अभी अभी मैंने तुम्हारे साथ गुफ्तगू में रवा रखी। दूसरे, मैं आज तुम्हारे सामने एक एतराफ़ करना चाहता हूँ। उम्मीद करता हूँ कि तुम मेरी साफ गोई की दाद दोगे और मुझे अपनी रहमदिली के सदक़े माफ़ कर दोगे। मैं हमेशा तुमको अजहद कमीना, खुदगर्ज और अय्यार इंसान समझता रहा। देखो नाराज़ मत होना, इंसान से गलती हो जाती है, लेकिन आज तुमने अपनी शराफत और दोस्त परवरी का वो सबूत दिया है, मुझ पर साबित कर दिया है कि मैं कितना काबिल नफरत, तंग ख्याल और हकीर शख्स हूँ, मुझे माफ़ कर दो। मेरी आंखों में आंसू भर आए। करीब था कि मिर्ज़ा के हाथ को बोसा देता और अपने आंसुओं को छुपाने के लिए उसकी गोद में सर रख देता, लेकिन मिर्ज़ा साहब कहने लगे, वाह इसमें मेरी फयाजी क्या हुई, मेरे पास एक बाइसिकल है, जैसे मैं सवार हुआ वैसे तुम सवार हुए। मैंने कहा, मिर्ज़ा मुफ्त तो मैं ना लूँगा, ये तो नहीं हो सकता। कहने लगे, बस इसी बात से मैं डरता था, तुम हसास इतने हो कि किसी का एहसान लेना गवारा ही नहीं करते, हालांकि खुदा गवाह है कि इसमें कोई एहसान नहीं। मैंने कहा, खैर कुछ भी सही, तुम सचमुच मुझे इसकी कीमत बता दो। मिर्ज़ा बोले, कीमत का जिक्र करके तुम खामखा मुझे कांटों में घसीटते हो, और जिस कीमत पर मैंने ख़रीदी थी वो तो बहुत ज़्यादा थी, और अब तो वो इतने की रही भी नहीं। मैंने कहा, तुमने कितने में ख़रीदी थी? कहने लगे, मैंने 125 रुपये में ली थी, लेकिन उस ज़माने में बाइसिकलों का रिवाज ज़रा कम था, इसलिए कीमतें भी ज़रा ज़्यादा थी। मैंने कहा, क्या बहुत पुरानी है? कहने लगे, नहीं नहीं ऐसी पुरानी क्या होती, मेरा लड़का इस पर कॉलेज आया जाया करता था, उसे कॉलेज छोड़े अभी 2 साल भी नहीं हुए, लेकिन इतना ज़रूर है कि आजकल की बाइसिकलों से ज़रा मुख्तलिफ है। आजकल तो बाइसिकल टीन की बनती है, जिन्हें कॉलेज के सरफिरे लौंडे सस्ती समझ कर ख़रीद लेते हैं, पुरानी बाइसिकलों के ढांचे मजबूत हुआ करते थे। मैंने कहा, मगर मिर्ज़ा 125 रुपये तो मैं हरगिज़ नहीं दे सकता, इतने रुपये मेरे पास कहाँ से आए, मैं तो इससे आधी कीमत भी नहीं दे सकता। कहने लगे, भाई मैं तुमसे पूरी कीमत थोड़ी मांगता हूँ, अव्वल तो कीमत लेना ही नहीं चाहता, लेकिन मैंने कहा, नहीं मिर्ज़ा कीमत तो तुम्हें लेनी पड़ेगी। अच्छा तुम यूँ करो, मैं कुछ रुपए तुम्हारी जेब में डाल देता हूँ, तुम घर जाके गिन लेना, अगर तुम्हें मंजूर हुए तो कल बाइसिकल भेज देना, वरना रुपए वापस कर देना। अब मैं यहाँ बैठ कर तुमसे सौदा चुकाऊँ, ये तो कुछ दुकानदारों की सी बात मालूम होती है। मिर्ज़ा बोले, भाई जैसे तुम्हारी मर्ज़ी, मैं तो अब भी ये कहता हूँ कि कीमत वीमत जाने दो, लेकिन मैं जानता हूँ तुम मानोगे नहीं। मैं उठकर अंदर कमरे में गया, मैंने सोचा इस्तेमाल शुदा चीज़ की लोग आम तौर पर आधी कीमत देते हैं, लेकिन जब मैंने कहा कि आधी कीमत भी नहीं दे सकता तो मिर्ज़ा इस पर एतराज़ तो नहीं किया, वो बेचारा तो बल्कि यही कहता रहा कि मुफ्ती ले लो। लेकिन मुफ्त कैसे ले लूँ, आखिर बाइसिकल है, एक सवारी है, घोड़ों और मोटरों और टांगों के ज़ुमरे में शुमार होती है। बक्स को खोला तो मालूम हुआ कि कुल 46 रुपये। 46 रुपये तो कुछ ठीक रकम नहीं, 45 या 50 हों जब भी बात है, 50 तो हो नहीं सकते, और 45 ही देने तो 40 ही क्यों ना दिए जाएं। जिन रकमों के आखिर में सिफर आता है वो रकमें कुछ ज्यादा माकूल मालूम होती हैं। बाहर आया, 40 रुपये मुट्ठी में बंद करके मैंने मिर्ज़ा की जेब में डाल दिए। मिर्ज़ा से मैंने कहा, देखो इसको कीमत मत समझना, लेकिन अगर एक मुफलिस दोस्त की हकीर सी रकम मंजूर करना तुम्हें अपनी तौहीन मालूम न हो तो कल बाइसिकल भिजवा देना। मिर्ज़ा सब चलने लगे तो मैंने फिर कहा, मिर्ज़ा कल ज़रूर सुबह ही सुबह भिजवा देना, रुख्सत होने से पहले। फिर एक दफ़ा मैंने कहा, भाई कल सुबह 8-9 बजे तक हैं, देर ना करना, और देखो मेरे थोड़े से रुपयों को भी ज़्यादा समझना, और खुदा हाफिज़, और तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया, मैं बहुत ममनून हूँ, और मेरी गुस्ताखी को माफ़ कर देना, और देखो कभी कभी यूँ बेतकल्लुफ़ी में। अच्छा सुबह 8-9 बजे तक हैं, ज़रूर, खुदा हाफिज़। रात को बिस्तर पर लेटा तो बाइसिकल पर सैर करने के मुख्तलिफ प्रोग्राम तजवीज़ करता रहा। ये इरादा तो पुख्ता कर लिया था कि 2-3 दिन के अंदर शहर की तमाम तारीखी इमारात को नए सिरे से देख डालूंगा, इसके बाद अगले गर्मी के मौसम में हो सका तो बाइसिकल पर कश्मीर वगैरह की सैर करूंगा। सुबह सुबह हर रोज़ नहर तक जाया करूंगा, शाम को ठंडी सड़क पर जहां और लोग सैर को निकलेंगे मैं भी सड़क की साफ शफाफ सतह पर हल्के हल्के खामोशी के साथ हाथी दांत की एक गेंद की मानिंद निकल जाऊंगा। डूबते हुए आफ्ताब की रोशनी बाइसिकल के हैंडल पर और चमकीले हिस्सों पर पड़ेगी तो बाइसिकल जगमगा उठेगी और ऐसा मालूम होगा कि एक राजहंस ज़मीन के साथ साथ उड़ रहा है। वो मुस्कुराहट जिसका मैंने पहले जिक्र किया वो अभी तक मेरे होंठों पर खेल रही थी। बारहा दिल चाहा कि अभी जाऊं और इसी वक्त मिर्ज़ा को गले लगा दूं। रात को ख्वाब में भी दुआएं मांगता रहा। सुबह उठा तो उठते के साथ ही नौकर ने खुशखबरी सुनाई कि हुजूर वो बाइसिकल आ गई। मैंने कहा इतनी सवेरे? नौकर ने कहा वो तो रात ही को आ गई थी, आप सो गए थे, मैंने जगाना मुनासिब ना समझा, और साथ ही मिर्ज़ा साहब का आदमी ढिबरियाँ कसने का एक औजार भी दे गया। मैं हैरान तो हुआ कि मिर्ज़ा साहब ने साइकिल भिजवाने में इस कदर उजलत से क्यों काम लिया, लेकिन इस नतीजे पर पहुंचा कि आदमी नहायत शरीफ और दयानतदार हैं, रुपए ले लिए थे तो बाइसिकल क्यों रोक रखते। नौकर से कहा, देखो ये औजार यहीं छोड़ जाओ, और देखो बाइसिकल को किसी कपड़े से खूब अच्छी तरह झाड़ो, और ये मोड़ पर जो बाइसिकलों वाला बैठता है उससे जाकर बाइसिकल में डालने का तेल ले आओ, और देखो भागा कहाँ जा रहा है। अबे हम ज़रूरी बात तुमसे कहना चाहते हैं, बाइसिकल वाले से तेल की एक कुप्पी भी लाना, और जहाँ जहाँ तेल देने की जगह है वहाँ तेल दे देना, और बाइसिकलों वाले से कहना कि कोई घटिया सा तेल ना दे दे जिससे तमाम पुर्जे ही ख़राब हो जाएं, बाइसिकल के पुर्जे बड़े नाजुक होते हैं, और बाइसिकल बाहर निकाल कर रखो, हम अभी कपड़े पहन कर आते हैं, हम ज़रा सैर को जा रहे हैं, और देखो साफ़ कर देना, और बहुत ज़ोर ज़ोर से कपड़ा मत रगड़ना, बाइसिकल का पॉलिश घिस जाता है। जल्दी जल्दी चाय पी, गुसल खाने में बड़े जोश व खरोश के साथ चल चल चमेली बाग में गाता रहा। उसके बाद कपड़े बदले, औजार को जेब में डाला और कमरे से बाहर निकला। बरामदे में आया तो बरामदे के साथ ही एक अजीब व गरीब मशीन नज़र पड़ी। ठीक तरह पहचान ना सका कि ये क्या चीज़ है। नौकर से पूछा, क्यों भाई ये क्या चीज़ है? बोला, हुजूर ये बाइसिकल है। मैंने कहा, बाइसिकल? किसकी बाइसिकल? कहने लगा, मिर्ज़ा साहब ने भिजवाई आपके लिए। मैंने कहा, और जो बाइसिकल रात को उन्होंने भेजी थी वो कहाँ गई? कहने लगा, यही तो है। मैंने कहा, क्या बकता है, जो बाइसिकल मिर्ज़ा साहब ने कल रात को भेजी थी वो बाइसिकल यही है? कहने लगा, जी हाँ। मैंने कहा, अच्छा। और फिर उसे देखने लगा। रफ्ता रफ्ता मैं उस चीज़ के करीब आया जिसको मेरा नौकर बाइसिकल बता रहा था। उसके मुख्तलिफ पुर्जों पर गौर किया, इतना तो साबित हो गया कि बाइसिकल है। लेकिन हैरत से ये साफ जाहिर था कि कल और चरखा और इस तरह की और इजादात से पहले की बनी हुई है। पहिए को घुमा घुमा कर वो सुराख तलाश किया जहां किसी जमाने में तेल दिया जाता था, लेकिन अब उस सुराख में से आमदोरफ्त का सिलसिला बंद था। चुनाचे नौकर बोला, हुजूर वो तेल तो सब इधर उधर बह जाता है, बीच में तो जाता ही नहीं। मैंने कहा, अच्छा ऊपर ऊपर ही डाल दो, ये भी मुफीद होता है। आखिरकार बाइसिकल पर सवार हुआ, पहला ही पांव चलाया तो ऐसा मालूम हुआ जैसे कोई मुर्दा अपनी हड्डियां चिटखा चिटखा कर अपनी मर्जी के खिलाफ जिंदा हो रहा है। घर से निकलते ही कुछ थोड़ी सी उतराई थी, उस पर बाइसिकल खुद ब खुद चलने लगी, लेकिन इस रफ्तार से जैसे तारकोल जमीन पर बहता है। और साथ ही मुख्तलिफ हिस्सों से तरह तरह की आवाज़ें बरामद होनी शुरू हुई। इन आवाज़ों के मुख्तलिफ गिरोह थे। ची चा चू किस्म की आवाज़ें ज़्यादातर गद्दी के नीचे और पिछले पहिए से निकलती थी। खट खड़ के कबील की आवाज़ें मटगाड़ों से आती थी और चुर्रुक चुर के सुर जंजीर और पैडल से निकलते थे। जंजीर ढीली थी, जब कभी पैडल पर जोर डालता जंजीर में एक अंगड़ाई सी पैदा होती थी जिससे वो तन जाती थी और चुड़ चुड़ बोलने लगती थी, फिर ढीली हो जाती थी। पिछला पहिया घूमने के अलावा झूमता भी था। यानी एक तो आगे को चलता था, इसके अलावा दाने से बाएं और बाएं से दाने को भी हरकत करता था। चुनाचे सड़क पर जो निशान पड़ जाता था उसको देखकर ऐसा मालूम होता था जैसे कोई मखमूर सांप लहरा कर निकल गया। मडगार्ड थे तो सही, लेकिन पहियों के ऐन ऊपर न थे। उनका फायदा सिर्फ ये मालूम हुआ कि इंसान शिमाल की समत सैर को निकले और आफ्ताब मगरिब में गुरूब हो रहा हो तो मडगार्डों की बदौलत टायर धूप से बचे रहेंगे। अगले पहिए के टायर में एक बड़ा सा पैवंद लगा था जिसकी वजह से पहिया हर चक्कर में एक दफ़ा लम्हे भर को ज़ोर से ऊपर उठ जाता था और मेरा सर पीछे को यूं झटके खा रहा था जैसे कोई मुतवातर ठोड़ी के नीचे मुक्के मार रहा था। पिछले और अगले पहिए को मिला के जो आवाज़ें निकल रही थीं उनसे फिज़ा में एक भौंचाल सा आ गया। बाइसिकल के कई पुर्जे जो अब तक सो रहे थे बेदार होकर गोया हुए, इधर उधर के लोग चौंके, माँओं ने अपने बच्चों को सीने से लगा लिया। खड़ खड़ के बीच में पहियों की आवाज़ जुदा सुनाई दे रही थी, लेकिन चूंकि बाइसिकल अब पहले से तेज़ थी इसलिए चौं चौं फट की आवाज़ ने अब चचूं फट की सूरत अख्तियार कर ली। तमाम बाइसिकल किसी अफ्रीकी जबान की गर्दानें दोहरा रही थी। इस कदर तेज़ रफ्तारी बाइसिकल की तब नाजुक पर गरां गुजरी। चुनाचे उसमें यकलख दो तब्दीलियां वाकई हुई। एक तो हैंडल दूसरी तरफ को मुड़ गया जिसका नतीजा ये हुआ कि मैं जा तो सामने को रहा था लेकिन मेरा तमाम जिस्म दाएं तरफ को मुड़ा हुआ था। इसके अलावा बाइसिकल की गद्दी दफ़तन 6 इंच के करीब नीचे हो गई। चुनाचे जब पैडल चलाने के लिए मैं टांगे ऊपर नीचे कर रहा था तो मेरे घुटने मेरी ठोड़ी तक पहुँच जाते। कमर दोरी होकर बाहर निकली हुई थी और साथ ही अगले पहिए की अटकेलियों की वजह से सर बराबर झटके खा रहा था। गद्दी का नीचा होना अजहद तकलीफ दे साबित हुआ, इसलिए मैंने मुनासिब यही समझा कि इसको ठीक कर लूँ। चुनाचे मैंने बाइसिकल को ठहरा लिया और नीचे उतरा। बाइसिकल के ठहर जाने से यकलख्त जैसे दुनिया में एक खामोशी सी छा गई। जेब से मैंने औजार निकाला, गद्दी को ऊंचा किया, कुछ हैंडल को ठीक किया और दोबारा सवार हो गया। 10 कदम भी चलने ना पाया था कि अब हैंडल यकलख्त नीचा हो गया, इतना कि गद्दी अब हैंडल से कोई फुट भर ऊंची थी। मेरा तमाम जिस्म आगे को झुका हुआ था और तमाम बोझ दोनों हाथों पर था जो हैंडल पर रखे थे और बराबर झटके खा रहे थे। आप मेरी हालत को तसव्वुर करें तो आपको मालूम होगा कि मैं दूर से ऐसा मालूम हो रहा था जैसे कोई औरत आटा गूंध रही हो। मुझे इस मुशाबहत का एहसास बहुत तेज़ था जिसकी वजह से मेरे माथे पर पसीना आ गया। और दाएं बाएं लोगों को कनखियों से देखता था। यूं तो हर शख्स मील भर पहले ही से मुड़ मुड़ कर देखने लगता था, लेकिन इनमें कोई भी ऐसा ना था जिसके लिए मेरी मुसीबत ज़ियाफ़ते तबाह का बायस न हो। हैंडल तो नीचा हो ही गया था, थोड़ी देर के बाद गद्दी भी नीची हो गई और मैं हमतन ज़मीन के करीब पहुंच गया। एक लड़के ने आवाज़ दी, देखो ये आदमी क्या कर रहा है। गोया इस बदतमीज़ के नज़दीक मैं कोई करतब दिखा रहा था। मैंने उतर कर फिर हैंडल और गद्दी को ऊँचा किया, लेकिन थोड़ी देर के बाद इनमें से एक ना एक फिर नीचा हो जाता। वो लम्हे जिनके दौरान मेरा हाथ और मेरा जिस्म बराबर एक ही बुलंदी पर वाक़ हों बहुत ही कम थे, और इनमें भी मैं यही सोचता था कि अब के गद्दी पहले बैठेगी या हैंडल, चुनाचे निडर होकर ना बैठता। जब दो मील गुजर गए और बाइसिकल की उठक बैठक ने एक मुकर्रर बाकायदगी की सूरत इख्तियार कर ली, तो फैसला किया कि किसी मिस्त्री से पेच कसवा लेने चाहिए। चुनाचे मैं बाइसिकल को एक दुकान पर ले गया। बाइसिकल की खड़ खड़ से जितने लोग काम कर रहे थे सबके सब सर उठाकर मेरी तरफ देखने लगे, लेकिन मैंने जी कड़ा करके कहा, ज़रा इसकी मरम्मत कर दीजिए। एक मिस्त्री आगे बढ़ा, लोहे की एक सलाख उसके हाथ में थी। उसने मुख्तलिफ हिस्सों को बड़ी बेदर्दी के साथ ठोक बजा कर देखा। मालूम होता था कि उसने बड़ी तेज़ी के साथ सब हालात का जायज़ा लगा लिया। फिर मुझसे पूछने लगा, किस किस पुर्जे की मरम्मत कराइएगा। मैंने कहा, बड़े गुस्ताख हो तुम, देखते नहीं कि सिर्फ हैंडल और गद्दी को ज़रा ऊँचा करवा के कसवाना है, बस और क्या। और मेहरबानी करके फ़ौरन ठीक कर दो और बताओ कितने पैसे होंगे। मिस्त्री कहने लगा, मडगार्ड भी ठीक ना कर दूँ। मैंने कहा, हाँ वो भी कर दो। कहने लगा, बाकी चीज़ें भी ठीक करा लें तो अच्छा हो। मैंने कहा, अच्छा कर दो। बोला, यूँ थोड़ी हो सकता है, 10-15 दिन का काम है, आप इसे यहाँ हमारे पास छोड़ जाइए। मैंने कहा, पैसे कितने लोगे। कहने लगा, बस 40-1 रुपये लूँगा। हमने कहा, बस जी बस, जो काम तुमसे कहा है वो करो और बाकी हमारे मामलात में दखल मत दो। थोड़ी देर के बाद हैंडल और गद्दी फिर ऊँची करके कस दी गई। मैं चलने लगा तो मिस्त्री ने कहा, मैंने कस तो दिया है लेकिन पेच सब घिसे हुए हैं, थोड़ी देर में फिर ढीले हो जाएंगे। मैंने कहा, बदतमीज़ कहेंगा तो दुआ ने पैसे मुफ्त में लिए। बोला, जनाब आपको बाइसिकल भी तो मुफ्त में मिली होगी, ये आपके दोस्त मिर्ज़ा साहब की है ना। लल्लू, ये वही बाइसिकल जो पिछले साल मिर्ज़ा साहब यहाँ बेचने को लाए थे, पहचानी तुमने। भाई सदियाँ गुजर गईं लेकिन बाइसिकल की ख़ता माफ़ होने में नहीं आती। मैंने कहा, वाह, मिर्ज़ा साहब के लड़के इस पर कॉलेज आया जाया करते थे और इनको अभी कॉलेज छोड़े 2 साल भी नहीं हुए। मिस्त्री ने कहा, हाँ वो तो ठीक है लेकिन मिर्ज़ा साहब खुद जब कॉलेज में पढ़ते थे तो उनके पास भी तो यही साइकिल थी। मेरी तबीयत ये सुनकर कुछ मुर्दा सी हो गई। मैं बाइसिकल को साथ लिए आहिस्ता आहिस्ता पैदल चल पड़ा, लेकिन पैदल चलना भी मुश्किल था। उस बाइसिकल के चलाने में ऐसे ऐसे पट्ठों पर जोर पड़ता था जो आम बाइसिकलों के चलाने में नहीं आता, इसलिए टांगों और कंधों और कमर और बाजुओं में जा बजा दर्द हो रहा था। मिर्ज़ा का ख्याल रह रह कर आता, लेकिन मैं हर बार कोशिश करके उसे दिल से हटा देता, वरना मैं पागल हो जाता। और जुनून की हालत में पहली हरकत मुझसे ये सरजद होती कि मिर्ज़ा के मकान के सामने बाज़ार में एक जलसा मुनाकिद करता जिसमें मिर्ज़ा की मक्कारी, बेईमानी और दगाबाजी पर एक तवील तकरीर करता, कुल बनी नौ इंसान और आइंदा आने वाली नस्लों को मिर्ज़ा की नापाक फितरत से आगाह करता और उसके बाद एक चिता जलाकर उसमें जिंदा जल जाता। मैंने बेहतर यही समझा कि जिस तरह हो सके अब इस बाइसिकल को औने पौने दामों में बेचकर जो वसूल हुआ उसी पर सब्र शुक्र करूं, बला से 10-15 रुपये का खसारा सही, 40 के 40 रुपये ज़ाया तो ना होंगे। रास्ते में बाइसिकलों की एक दुकान आई, वहाँ ठहर गया। दुकानदार बढ़कर मेरे पास आया लेकिन मेरी ज़बान को जैसे कुफल लग गया। उम्र भर किसी चीज़ को बेचने की नौबत ना आई थी, मुझे ये भी मालूम नहीं कि ऐसे मौके पर क्या कहते हैं। आखिर बड़े सोच विचार और बड़े तामुल के बाद मुँह से सिर्फ इतना निकला, ये बाइसिकल है। दुकानदार कहने लगा, फिर? मैंने कहा, लोगे? कहने लगा, क्या मतलब? मैंने कहा, बेचते हैं हम। दुकानदार ने मुझे ऐसी नज़र से देखा कि मुझे ये महसूस हुआ कि मुझ पर चोरी का शुबा कर रहा है। फिर बाइसिकल को देखा, फिर मुझे देखा, फिर बाइसिकल को देखा। ऐसा मालूम होता था कि ये फैसला नहीं कर सकता कि आदमी कौन सा है और बाइसिकल कौन सा। आखिरकार बोला, क्या करेंगे आप इसको बेचकर? ऐसे सवालों का खुदा जाने क्या जवाब होता है। मैंने कहा, क्या तुम ये पूछना चाहते हो कि जो रुपए मुझे वसूल होंगे उनका मसरफ क्या होगा? कह लगा, वो तो ठीक है मगर कोई क्या करेगा इसको लेकर? मैंने कहा, इस पर चढ़ेगा और क्या करेगा? कहने लगा, अच्छा चढ़ गया फिर? मैंने कहा, फिर क्या, फिर चलाएगा और क्या? दुकानदार बोला, अच्छा खुदा बख्श, ज़रा यहाँ आना, ये बाइसिकल बिकने आई है। जिन हजरत का इसमें गिरामी खुदा बख्श था उन्होंने बाइसिकल को दूर ही से यूँ देखा जैसे बू सूंघ रहे हों। اس کے بعد دونوں نے آپس میں مشورہ کیا. آخر وہ جن کا نام خدا بخش نہیں تھا میرے پاس آئے اور کہنے لگے, تو آپ سچ مچ اسے بیچ رہے ہیں؟ میں نے کہا, تو اور کیا, محض آپ سے ہم کلام ہونے کا فخر حاصل کرنے کے لیے گھر سے یہ بہانہ تلاش کر کے لایا تھا. کہنے لگا, تو کیا لیں گے آپ؟ میں نے کہا, تم ہی بتاؤ. کہنے لگا, سچ مچ بتاؤں؟ میں نے کہا ہاں. کہنے لگا, 3 روپے دوں گا اس کے. میرا خون کھول اٹھا اور میرے ہاتھ پاؤں اور ہونٹ غصے کے مارے کانپنے لگے. میں نے کہا, وہ صنعت و حرفت سے پیٹ پالنے والے نچلے طبقے کے انسان, مجھے اپنی توہین کی پرواہ نہیں, لیکن تو نے اپنی بیہودہ گفتاری سے اس بے زبان چیز کو جو صدمہ پہنچایا ہے, اس کے لیے میں تجھے قیامت تک معاف نہیں کر سکتا. یہ کہہ کے میں بائسیکل پر سوار ہو گیا اور اندھا دھن چلانے لگا. مشکل سے 20 قدم گیا ہوں گا, مجھے ایسے معلوم ہوا جیسے زمین یکلخت اچھل کے مجھ سے آ لگی ہے. آسمان میرے سر پہ سے ہٹ کے میری ٹانگوں کے بیچ میں سے گزر گیا اور ادھر ادھر کی عمارتوں نے ایک دوسرے کے ساتھ اپنی اپنی جگہ بدل لی ہے. حواس بجا ہوئے تو معلوم ہوا میں زمین پر اس بے تکلفی سے بیٹھا ہوں, گویا بڑی مدت سے مجھے صرف اسی بات کا شوق تھا جو آج پورا ہوا. ارد گرد کچھ لوگ تھے جن میں اکثر ہنس رہے تھے. سامنے وہ دکان تھی جہاں ابھی ابھی میں نے اپنی ناکام گفت و شنید کا سلسلہ منقطع کیا تھا. میں نے اپنے گرد و پیش پر غور کیا تو معلوم ہوا کہ میری بائسیکل کا پہیہ الگ ہو کر لڑھکتا ہوا سڑک اس پار جا پہنچا ہے اور باقی بائسیکل میرے پاس پڑی ہے. میں نے فوراً اپنے آپ کو سنبھالا, جو پہیہ الگ ہو گیا تھا اس کو ایک ہاتھ میں اٹھایا, دوسرے ہاتھ میں باقی ماندہ بائسیکل اور چل کھڑا ہوا. یہ محض ایک اضطراری حرکت تھی, ورنہ حاشا وکلا مجھے وہ بائسیکل ہرگز اتنی عزیز نہ تھی کہ میں اس حالت میں اس کو ساتھ لیے لیے پھرتا. جب میں یہ سب کچھ اٹھا کر چل دیا تو میں نے اپنے آپ سے پوچھا, یہ تم کیا کر رہے ہو, کہاں جا رہے ہو, تمہارا ارادہ کیا ہے؟ سب سوالوں کا جواب یہی ملا کہ دیکھا جائے گا, فی الحال تم یہاں سے چل دو, سب لوگ تمہیں دیکھ رہے ہیں, سر اونچا رکھو اور چلتے جاؤ, اور جو ہنس رہے ہیں انہیں ہنسنے دو. اس قسم کے بیہودہ لوگ ہر قوم میں پائے جاتے ہیں. آخر ہوا کیا, محض ایک حادثہ, بس دائیں بائیں مت دیکھو, چلتے جاؤ. لوگوں کے ناشائستہ کلمات بھی سنائی دے رہے تھے. ایک آواز آئی, بس حضرت غصہ تھوک دیجئے. ایک دوسرے صاحب بولے, بے حیا بائسیکل, گھر پہنچ کے تجھے مزہ چکھاؤں گا. ایک والد اپنے لخت جگر کی انگلی پکڑے جا رہے تھے, میری طرف اشارہ کر کے کہنے لگے, دیکھو بیٹا یہ سرکس کی بائسیکل ہے, اس کے دونوں پہیے الگ الگ ہوتے ہیں. لیکن میں چلتا گیا. تھوڑی دیر کے بعد میں آبادی سے دور نکل گیا. اب میری رفتار میں ایک عظمت پائی جاتی تھی. میرا دل جو کئی گھنٹوں سے ایک کشمکش میں پیچ و تاب کھا رہا تھا, اب بہت ہلکا ہو گیا تھا. میں چلتا گیا چلتا گیا, حتیٰ کہ دریا پر جا پہنچا اور پل کے اوپر کھڑے ہو کر میں نے دونوں پہیوں کو ایک ایک کر کے اس بے پرواہی کے ساتھ دریا میں پھینک دیے جیسے کوئی لیٹر بکس میں خط ڈالتا ہے. واپس شہر روانہ ہو گیا. سب سے پہلے مرزا کے گھر گیا, دروازہ کھٹکھٹایا. مرزا بولے, اندر آ جاؤ. میں نے کہا, آپ ذرا باہر تشریف لائیے, میں آپ جیسے خدا رسیدہ بزرگ کے گھر میں وضو کیے بغیر کیسے داخل ہو سکتا ہوں؟ باہر تشریف لائے تو میں نے وہ اوزار ان کی خدمت میں پیش کیا جو انہوں نے بائسیکل کے ساتھ مفت ہی مجھ کو عنایت فرمایا اور کہا, مرزا صاحب آپ ہی اس اوزار سے شوق فرمایا کیجئے, میں اب اس سے بے نیاز ہو چکا ہوں. گھر پہنچ کر میں نے پھر علم کیمیا کی اس کتاب کا مطالعہ شروع کیا جو میں نے ایف اے میں پڑھی تھی.